इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हृदय की विशालता और उदार वृत्ति ये भी लोक भावना का ही हमारे लिए संदेश है। वर हम अपने जीवन को इस तरह से धीरे धीरे बनाएं, एक छोटा सा उदाहरण जिससे कि मालूम पड़े कि हाँ वास्तव में हमारे भीतर अगर ऐसी उदार वृत्ति और हृदय की विशालता आ जावे तो हम अपने उस लोकाग्र पर विराजमान होने के लिए जो आत्मज्ञान आवश्यक है उसको प्राप्त कर लेंगे। उदार चित्त वाला ही क्या कहते हैं, मेरा और तेरा करने वाला तो बहुत क्षुद्र है। वास्तव में तो उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम्। जिसका हृदय विशाल है उसके लिए तो सब अपने हैं। मेरे तेरे का भाव मिट जाता है, मेरे तेरे का भाव ही संसार है, मेरे तेरे के भाव से ही मैं इस संसार में भ्रमण करता हूँ। मुझे ये आत्मज्ञान हो जाए कि तेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, व्यर्थ है ऐसा विचार करना, और मेरे अंदर ऐसी हृदय की विशालता आ जावे। एक उदाहरण मैं पढ़ता था, बस उसको सुनाऊं। उसके पहले अपन थोड़ा सा ये देख लें कि आचार्य भगवंत, नहीं तो हम भूल जाते हैं, आचार्य भगवंत हमारे लिए क्या उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में जो हमने जितना समझा वही हमें आचार्य भगवंतों ने कहा है, या कि हमने कुछ अलग तो नहीं समझ लिया उससे, ये देख लें अपन क्या कह रहे हैं। नाऊ न लोग सारम निस्सारम दीह गमन संसारम लोयग सिहर बासम झाई पत्येन सुबासम है लोक का यह वितान असार सारा संसार तीव्र गति से गममान न्यारा यो जान मान मुनि हो शुभ ध्यान धारो लोकाग्र में स्थित शिवालय को निहारो। ये लोक असार है, हमारी कर्तृत्व बुद्धि, हमारी अपनी शिकायत की आदत, हमारी अपनी इससे आशा रखने की सारी भ्रांतियां मिथ्या हैं। लोक तो असार ही है और निरंतर आवागमन इसमें लगा है, जन्म और मरण का तीव्र गति से तीव्र है इस संसार में आवागमन का प्रवाह, और कह रहे हैं इसलिए ऐसा जान करके शुभ ध्यान करो, अपने आत्मा का ध्यान करो, आत्मा में ही लीन हो, आत्मा का ही अवलोकन करो। क्यों? ताकि तुम लोक के अग्रभाग में स्थित जो शिवालय है, जो सिद्धालय है, उसमें पहुंच सको। शायद अपन ने यही बात अपने ढंग से और समझी है कि इस लोक भावना से हमें कितनी बातें सीखनी है। और आखिरी बात जो अपन को सीखनी वो यही कि हमारे अंदर हृदय की विशालता आवे, चित्त में उदारता आवे। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण ताकि बात जल्दी से स्पष्ट हो जाती है। क्या हुआ, एक बार एक बहुत हरा भरा बहुत बढ़िया सघन वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर बहुत पक्षी रहते थे। जो हरा भरा वृक्ष है उस पर तो बहुत पक्षी रहते हैं। और क्या हुआ कि उस जंगल में एक शिकारी शिकार खेलने आया, उसने एक बार तीर चलाया, वो तीर विष से बुझा हुआ था, तो वो तीर विष से बुझा हुआ था और उसके वृक्ष के पास से हिरण गुजरा, तो वो तीर हिरण को ना लग करके और उस वृक्ष को जाकर के लग गया, वृक्ष में चुप गया। वो शिकारी तो अपना शिकार की खोज में आगे बढ़ गया, लेकिन वो तीर नहीं निकाला उसने उस वृक्ष से, तो उस विष के प्रभाव से धीरे धीरे वो वृक्ष जलने लगा, अर्थात नष्ट होने लगा, सूखने लगा, क्योंकि विषाक्त विष उसके अंदर भी पहुंच गया, तो उस विष की वजह से वो सूखने लगा। जैसे वृक्ष सूखने लगा, फल लगना बंद हो गए, पक्षियों ने अपना अपना स्थान बदलना शुरू कर दिया। इतना ही रिश्ता है इस संसार में भी, देखा जावे अपन का भी है, इससे ज्यादा और क्या है। जहां अपन को अपना स्वार्थ पूरा होता दिखता है उस जगह अपन इकट्ठे हो जाते हैं, वहां रहने लगते हैं, परिवार बना लेते हैं, समाज बना लेते हैं, फिर जब स्वार्थ नहीं सकता है तो छोड़ छोड़ के अपना चले जाते हैं, पक्षी भी चले जाने लगे। एक तोता था, वो तोता जो है उसका जन्म उसी वृक्ष पर हुआ था, हालांकि और भी बहुत सारे पक्षियों का जन्म उसी वृक्ष पर हुआ था, लेकिन उस तोते के मन में एक ही भाव था कि इस वृक्ष ने कितना उदार है, कितना विशाल हृदय है इसका कि हम सबके लिए इसने स्थान दिया। आज इस पर मुश्किल आई है, आज ये सूखने लगा है, तो क्या मैं अपने इस जन्मदाता को, इस जन्म स्थान को छोड़कर के अन्यत्र चला जाऊं? अपन तो ऐसा ही करते हैं, अपन तो अपने अपने थोड़े से सुख सुविधा की खोज के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, और जब उनके मरण की खबर मिलती है तो शायद तीसरे दिन और कई बार तो तेरहवें दिन शामिल हो पाते हैं। इतने दूर चले जाते हैं कई बार, हमने देखा है अपनी आंख से। हाँ, एक व्यक्ति के परिवार में दो बेटियां दो बेटे, दोनों बेटियों का बढ़िया बढ़िया जगह ब्याह कर दिया, दोनों बेटे बढ़िया इंजीनियर हो गए और चले गए दूर, और घर है इतना बड़ा कि जिसमें अगर वे दोनों बेटियों के परिवार आ जाएं, दोनों बेटों के आ जाएं और इनका खुद का वो पूरा रह सकता है, इतना बड़ा घर, लेकिन उसमें बचे दो ही प्राणी जिनने यात्रा शुरू करी थी, वे ही बचे आखिरी में। हाँ, अब कितने कितने साल के, 55 और 60 साल के हो गए, रात को 12 बजे हार्ट अटैक होता है, तब जो बहू, जो आज 60 साल की माँ हो गई, जिसकी अपनी बहुएं हैं, जो कभी घर से बाहर ऐसे नहीं निकली रात में, उसे अपने दरवाजे खोल करके बाहर आवाज देनी पड़ती कि कोई तो हो जो बचा ले, डॉक्टर को बुला दे, कोई नहीं है। जिनके दो दो बच्चे, जिनकी भरी भरी भरा परिवार, जिनकी बेटियां और उनके उनके कोई नहीं है और वे बुला रहे हैं, और फिर वो तो ये छोटा सा गांव, इसलिए उस गांव में, और फौरन डॉक्टर आ गए और उन्होंने देख लिया, बच गए वो दोनों। मेरे पास आए, कहा आप ठीक कहते हैं, हमने जहां से यात्रा शुरू की थी हमने पाल पोस के बड़ा किया, क्या हुआ, क्या काम आए, अब हमें विरक्त हो जाना चाहिए, अपना धर्म ध्यान करना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए। वास्तव में यही स्थिति है, सब यही करते हैं, सब कोई ध्यान नहीं रखता, इतनी हृदय की विशालता नहीं है कि जिनने हमें पाला पोसा उनको अपने पास बुला ले, नहीं कोई नहीं बुलाता। हमारी गृहस्थी में दिक्कत हुई, हम आओ तो चल नहीं रहो, हम माता पिता को कहा चले, अब मम्मी को सवेरे से अपनो मंदिर जाने, उनको सोला को खाने, इनको वो करने, हमारे बस को नहीं, हमने बहू के बस को आए नहीं। बहुत स्पष्ट है, ऐसे ही देख, ये अपन लोक भावना भार है, एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अपन, आत्मानुभूति की बातें कर रहे हैं, आत्मदर्शन की बातें कर रहे हैं, और एक तरफ देखें अगर तो इतनी हृदय में विशालता नहीं है, जहां हम लोक के शिखर अग्रभाग पर स्थित होना चाह रहे वहां हमारे मन में इतनी तो विशालता होनी चाहिए कि हम अपने जिनको हम अपना मानते, चलो जो पराए हैं उनको छोड़ो, जिनको अपना मानते हैं उनका ही थोड़ा सा अपने हृदय में उनके लिए जगह बनाए रखें। ये उस तोते ने यही विचार किया और वो वहीं बना रहा, दाना पानी उसने छोड़ दिया, कहीं नहीं जाता था उस वृक्ष को छोड़ करके, क्या जाना, यही सूख रहा है, अब तो मैं इसको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, कहते हैं ऐसा देख करके। और जो कोई वहां पर देवता थे वो आ गए, उन्होंने कहा अरे तोते उड़ जाओ, सब तो उड़ गए, तुम अकेले इस पर बैठे हुए हो, ये तो सूख गया है, कुछ दिन के बाद ये धराशायी हो जाएगा और तुम्हारा इस पर अब रहना ठीक नहीं है। तो उस तोते ने कहा कि मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं कि मैं अपने इस जन्मदाता को छोड़ करके चला जाऊं, इसने मुझे हमेशा मीठे मीठे फल दिए, हमेशा छाया दी, मुझे सुरक्षा दी, इतना सब कुछ दिया और मैं इसे छोड़ के चले जाऊं, इसके मरण के साथ ही मेरा भी मरण हो जाए, मुझे स्वीकार है, मैंने भी दाना पानी छोड़ दिया, यह सूख रहा है, मेरा जीवन भी इसी में पूरा हो जाए। कहते हैं कि वो उसकी इस हृदय की विशालता और उदारता को देख करके बड़ा चकित हुआ देव, और उसने कहा बोलो तुम क्या चाहते हो। अब उसने सोचा कि शायद ये कुछ मांग लेगा, अपने लिए कुछ मांग लेगा, लेकिन देखो उसने कहा मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देते हो मुझे कोई वरदान तो इस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दो, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भैया इतनी हृदय की विशालता अपने भीतर है क्या, बस इतना विचार करना, नहीं है कोई बात नहीं, आना चाहिए कि नहीं, बस कब आएगी हमें नहीं मालूम, हम तो प्रयास करेंगे, हम रोज बैठ के इस बात का प्रयास करेंगे, रोज विचार करेंगे कि क्यों नहीं आती मेरे भीतर ऐसी विशालता, मैं क्यों नहीं जो है सब जीवों को नहीं दे पाता हूं आश्रय, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मन में सबके लिए आश्रय देने की भावना तो होनी चाहिए, भावना भाने में कौन सा हमको कोई बहुत बड़ा बोझा उठाना पड़ रहा है। हम रोज सुबह शाम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सब जीव यहाँ पर सुखी हों, क्या ऐसी भावना नहीं भा सकते। इस लोक में सब भ्रमण कर रहे हैं, सब दुखी हैं और सब अज्ञानता की वजह से दुखी हैं, सबको ज्ञान प्राप्त हो, सबको सुख प्राप्त हो, अगर वास्तव में हम ऐसी लोक के कल्याण की भावना भावें तो लोक भावना में यह भी निहित है, हम सब इसी तरह अपने जीवन में भावना भाकर जीवन का कल्याण करें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर।